ब्रेक में पता चलता है कि लाइफ इज शॉर्ट, ऐसी है ना। तो छोटी सी जिंदगी में छोटी सी ब्रेक ही काफी होती है। तो अब हम एक बहुत बड़ी और खूबसूरत इबादत का तذکرہ करेंगे जो कि जिंदगी में बस एक बार है, और अगर एक ही बार कर लें। और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप क्यों अपने और बच्चों के बूढ़े होने का इंतज़ार करते हैं। मैं जो बात अभी हज के मौजू पे कहने वाली हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। हमारे कल्चर में अमूमन बच्चों के पैदा होने के फौरन बाद से लेकर, ख़ास तौर पे उनके फिर बालिग होने पे, उनके कैरियर और उनकी शादी की फ़िक्र होती है। अल्लाह करे इसी तरह हमें उनके हज की फ़िक्र हो जाए। हज एक ऐसी इबादत है, शऊर के साथ, इल्म के साथ, फहम के साथ, अगर जवानी के बिल्कुल आगाज़ में कर लिया जाए तो ज़िंदगी का किबला बदल जाता है। माहौल का असर, दोस्तों का असर, मगरबी अफकार, आज के टर्म्स बहुत सारे मुसलमान पेरेंट्स के लिए चैलेंज बने हुए हैं। इसका एक बहुत खूबसूरत हल अपने बच्चों को बार बार हज और उम्रे के लिए लेकर जाएं। वेकेशन प्लान है, कोई चीज़ कम कर दीजिए, पाकिस्तान इंडिया के ट्रिप के बीच में ऐड करा लीजिए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी वो नस्लें जो वेस्ट में पल रही हैं, ख़ास तौर पे, एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने इस्लाम का गलबा नहीं देखा। तीसरी बात, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। और चौथी बात, जो नेट और मीडिया और सोशल मीडिया के असर में डिप्रेस रहते हैं कि हम मुस्लिम्स ऐसे क्यों हैं और सब हमें ही क्यों कहते हैं। उनको एक दफ़ा अल्लाह का घर दिखाइए, वहाँ जाकर एक रौनक तारी होती है, एकदम दिल पकड़ा जाता है। इतने ज़्यादा मुसलमानों को हमने कसरत से देखा नहीं होता, इतने ज़्यादा मुसलमानों का गेटअप हमने नहीं देखा होता। हम तो शर्मिंदा शर्मिंदा मुसलमान है ना, कुछ थोड़ा सा अगर इजहार भी करना चाहें अपने दीन का तो वो भी इधर उधर देख के करते हैं कि किसी को माइंड तो नहीं करेगा, कोई माइंड तो नहीं करेगा, और NOC ले के करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन वहाँ जाकर नेकी करना, इस्लामिक गेटअप का इख्तियार करना, और सबसे बढ़कर 5 वक्त की नमाजों पे मस्जिद की तरफ भागना, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देर इज़ नो अदर चॉइस कि आप दुकान पे बैठे रहें और नमाज ना पढ़ें, और आप अपने काउंटर पे अपने ऑफिस में बैठे हैं और काम करते रहें। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर इस दौर में मुसलमान उम्मत कर ले तो बहुत सारे मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। हज इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत इबादत है। इंट्रो में बात की थी कि जैसे हर हर रुकन की, हर इबादत की एक रूह है ना, तो हज की जो रूह है ना वो इत्तहाद है, यूनिटी। बिया नेशन, उम्मा बनो। वो कहते हैं ना कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये सबक मिलता है हज में जाके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को साथ लेकर ये बिल्डिंग बनवाई थी, और साथ ही साथ दुआएं कर रहे थे कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम, और साथ ही क्या कहा, वरीना मनासिकाना। और जो ही ये सब कुछ हो गया तो क्या कहा कि अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है, अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। तो क्या पूछा, काला व मिन ज़ुर्रियती। यानी अगर आप हज, मक्का, खाना काबा, इसकी हिस्ट्री और इसके इर्द गिर्द देखें तो असल में ये नस्लों के लिए ज़मीन हमवार की जा रही थी। हज अगर आप पूछें क्या है, हा जीम जीम, हज इरादा करना, कसद करना। क्या मतलब, किस चीज़ का कसद? कि आप मस्जिद हराम की तरफ निकलेंगे, मखसूस दिनों में मखसूस काम करेंगे, इसको हज कहते हैं। फतहुल कदीर बहुत खूबसूरत किताब है, उसकी जिल्द 2 पेज 120 पे जाकर देखिए। मस्जिद हराम की तरफ, यहाँ फिर नोट कीजिए, मस्जिद हराम, मक्का नहीं और मदीना नहीं और मस्जिद नबी नहीं। हज का कोई एक रुकन भी मस्जिद नबी से मुतल्लिक नहीं है, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज जैसी इबादत जिसमें हम बड़े शौक से, मोहब्बत से मक्का के साथ साथ मदीना भी जाते हैं, बैतुल्ला में नमाज़ें पढ़ने के साथ साथ बैतुल मस्जिद नबी में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर एक साइड पे कर भी दिया जाए तो हज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ दीन का मिजाज तो समझें, हम होंगे नहीं, अख्तियातन ये, और ये जो हमारे कल्चर में 40 नमाजों का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी मोहब्बत की बात है। आप 40 नहीं, आप कोशिश करें आप वहाँ 50 नमाजें पढ़ें, कोई हरज की बात नहीं है। लंबा टूर ट्रिप लेकर जाएं, मदीना में जाएं, रहें उधर जब तक आपका मदनी दौर ना पूरा हो, सीरत में वापस ही ना आए, लेकिन रिचुअल्स में इसका कोई दखल नहीं है। ये एक अल्लाह का बहुत खूबसूरत इंसाफ है। वरना आप देखिए, अब आप और मैं जिस तरीके से जाते हैं, कोई शुरू में जाता है, कोई बाद में जाता है, किसी का सफ़र मदीना से शुरू होता है, किसी का मदीना पे ख़त्म होता है। अगर बैतुल्लाह में जाने तवाफ़े इफाज़ा के लिए और अरफात के मैदान में जाने की तरह मस्जिद नबी में भी सबका दाखला लाजिम कर दिया जाता, आप सोचिए कि अभी भी हज के दिनों में जिन्होंने किया उनको इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, कितना 3-4 किलोमीटर है मक्का, मीना, मुजदलिफा और अरफात। इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस। इसके बावजूद कितना क्योस होता है। और अगर मदीना मनवरा और मस्जिद नबी का कुछ हिस्सा या वहाँ जाके कुछ करना भी हज का पार्ट बनता, हाउ बिग प्रॉब्लम विट बी, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला बंदे को उसकी वुस्सत से ज़्यादा नहीं आजमाते। हज कब फ़र्ज़ हुआ? अल्लाह ने हज को 9 हिजरी में फ़र्ज़ किया। ज़ादुल मात बहुत ही खूबसूरत किताब है, पार्ट 2 101 पेज पे देख लीजिए, और सूरह आल इमरान 97, वलिल्लाहि अलन्नासी वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। अनिल आलमीन, लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इस तक पहुंचने की इस्तेआत रखता हो वो इसका हज करे, और जो इनकार करे तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। और सही मुस्लिम की रिवायत नोट कीजिए, 1337, आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फ़र्ज कर दिया गया, बस तुम हज करो। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। बुखारी 8। हज कितनी दफ़ा ज़िंदगी में करना फ़र्ज़ है, यानी हज कितनी बार करेंगे? एक मरतबा ओनली। अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी में एक ही हज किया। सही मुस्लिम 1337। फिर इसी तरह हज के महीने कौन से हैं? कुरान में आते हैं अशहुरुल, कौन से हज कौन से महीनों में आता है? शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा का पहला अशरा। अमूमन लोग शवाल में सफ़र शुरू करते थे, और पैदल, घोड़ों और इस तरह बाज़ दफ़ा बहरी जहाज़ों में सफ़र करते करते ज़िलहज में पहुंचते थे, या ज़िलक़ादा की आखिरी तारीखों में, और फिर ज़िलहज में हज करके वापस पहुंचते थे। हज की फजीलत क्या है? बहुत दुख के साथ कहूंगी, इस साल ख़ास तौर पे, चूँकि हम लोगों ने नॉर्वे से हज का ग्रुप एक अनाउंस किया हुआ था, फ़र्स्ट टाइम हमने एक एक्सपीरियंस किया था कि हज का एक ग्रुप लेकर चले ये, और उस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बुक भी पढ़ाई, पूरा 1 वीक का कंटिन्यू सेशन भी था। लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आई, 90% मुस्लिम्स जो वेस्ट में रहते हैं, उन्होंने अभी तक हज नहीं किया हुआ। आप पाकिस्तान से अमेरिका आएँ या यूरोप आएँ, एक ही रास्ता है ना। आपको एनीवे मक्का से या मदीना के ऊपर से गुजरना ही पड़ता है, ऐसे ही है ना। लेकिन लोग इसको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। हालांकि ज़रा से फ़ज़ाइल सुनिए तो फिर आपको भी इंशाल्लाह शौक़ बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है फ़र्ज़ है, इसके बाद तो कुछ भी ना बोलूँ तो भी काफ़ी है। लेकिन फरमाया, हज मबरूर का बदला सिर्फ़ जन्नत है। बुखारी 1773। मबरूर क्या है? बिर से, नेकियों से भरा हुआ हज। हज मबरूर, बिर से, यानी जिस हज में बहुत सारी नेकियां की जाएं उसका बदला सिर्फ जन्नत ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। दूसरी रिवायत, हज करने वाला न्यू बॉर्न बेबी यानी नौमौलूद बच्चे की तरह गुनाहों से पाक हो जाता है। बुखारी 1521। सोचिए क्या फीलिंग आती है, प्योरिटी, खूबसूरती, इनोसेंस, मुस्कुराहट। फिर इसी तरह हज मबरूर अफजल अमल है। बुखारी 1519. फिर नेक्स्ट मुस्तकिल पै दर पे, यानी एक हज फिर उमरा फिर हज उमरा से, पै दर पे हज से फ़क्र और गुनाहों का खात्मा हो जाता है। तिर्मिज़ी की रिवायत 810. ये ऐसी है जैसे गंदे कपड़े को बार बार धोएं तो फिर आखिर में धब्बे ख़त्म हो जाएंगे ना। फिर इसी तरह से हज गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। सही मुस्लिम 321. और एक यंग मदर ने कहा, अरे अभी हज नहीं करना, फिर आएंगे तो दोबारा फिर गुनाहों में पड़ेंगे, आखिर में बुढ़े होंगे तो कर लेंगे. तो मैंने कहा काफ़ी अकलमंदी की बात है अगर शर्त यह कि आपको यकीन हो कि आप बुढ़े होंगे. लोग सोचते पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हज करके आएंगे, इतनी मुश्किल से नामा माल साफ़ कराया और फिर गंदा हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए. फिर इसी तरह हज और उमरा करने वाले को इनके खर्च और मेहनत के मुताबिक अजर मिलता है। बुखारी की रिवायत 1787. बस लोग सवाल करते हैं, मैं यहाँ बनाकर उसका जवाब अभी इसी हदीस की रोशनी में दे दूँ. कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े पैक होटलों में रहना चाहिए, पैकेजेस लेकर महंगे, यानी आपको बताइए सिल्वर स्टार और गोल्डन स्टार, उसमें खर्च ज़्यादा होता है और फासला कम होता है, लग्जरियस है. और इसके दूसरी सूरत यह कि दूर रह लें, छोटे छोटे होटलों में रह लें और पैसा बचेगा, लेकिन उसमें मुशक्क़त ज़्यादा है. तो मैं अक्सर इसी हदीस को सामने रखती हूँ कि जो पैसा ज़्यादा लगा कर जाएगा उसको पैसे का अजर है. आप रिलैक्स रहेंगे घरों में, जब साफ़ सुथरी जगहों पर रहते हैं तो वहाँ साफ़ सुथरा रहें, करीब होने की वजह से सुस्ती नहीं आएगी, मस्जिद में जाने की रास्तों में नहीं फंसेंगे, तो आपको अल्लाह पैसे की वजह से ज़्यादा देगा. तो जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो दूर रहेंगे तो उनको मेहनत का अजर मिलेगा, वुसअत क़ल्बी. हर बंदे को कोशिश कीजिए हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएं. ये फतवे बाजी छोड़ दें, आजकल ये भी बहुत हो गया, ये हज है जी, ये तो फैशन है, ये तो मॉल्स में फिरते हैं, इतने बड़े होटलों में रहते हैं, एक एक रात का लाखों का किराया, ये है वो है, देना पड़ता है. जब आप बुज़ुर्गों के साथ जाते हैं, बड़ों के साथ जाते हैं या बच्चों वाली माएँ हैं, तो आप अगर दूर रहेंगे तो वो तो शायद एक आधी नमाजी हरम में पढ़ेंगे, और वो गर्मी और जो एक ताफून और खराबी है, इबादत में खुशू ख़त्म होता है. तो हमेशा ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, और दूसरे को हमेशा अपने से अच्छा समझें. फिर हाजी को अपनी सवारी की वजह से भी अजर मिलता है. बहकी की रिवायत और सही इब्ने हब्बान में भी है. हज करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं. इब्ने माजा 2893. कितने लोग हैं जो सिर्फ हज और उमरे पे दुआएं करने जाते हैं, ये हमारा कल्चर है. बेटा मांगने जा रही हूँ, ठीक है जाइए मांगिए भी, कोई हर्ज नहीं, पर ये नियत ना करें कि बस सिर्फ बेटा ही लेके आना है, कुछ और भी लेके आना है इंशाल्लाह. फिर इस तरह अगर हज के लिए निकला हुआ शख्स फौत हो जाए तो इसके लिए मुकम्मल अजर है. सही तरगीब 1114. और क़्यामत के दिन अल्लाह ताला उसको किस हाल में उठाएगा कि वो तलबिया पढ़ रहा होगा. ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2892. फिर इसी तरह आप देखिए कि हज किस पे वाजिब है. शर्तें के 5. नंबर 1 इस्लाम, वही हर एक शर्त में आ रहा है, बुखारी 8. नंबर 2 बलूगत, इसकी भी वही रिवायात बहुत सारी हैं, आप तब हाकिम लिख लीजिए 481 पार्ट 1. अक़ल, मजनून ना हो बंदा, अबू दाऊद 4402. नंबर 4 आज़ादी, यानी ग़ुलाम बेचारा अपनी मर्ज़ी से हज भी नहीं कर सकता. फिर इसकी भी रिवायत जो है वो हाकिम 481 ही लिख लीजिए. नंबर 5 इस्तताअत, कैपेबिलिटी, आले इमरान 97. अभी ऊपर आयत मैंने पढ़ी भी आपके सामने. ख़वातीन के लिए 2 शरायत लाजिम है इससे एक्स्ट्रा. नंबर 1 महरम का साथ होना, बुखारी 1862, मुस्लिम 3272. और दूसरी बात है कि वो इद्दत में ना हो, हत्ता कि यहाँ तक आता है कि अगर शौहर साथ था और वहाँ फौत हो जाए तो औरत वापस आ जाएगी अपने घर में, वहाँ हज उसके बगैर नहीं करेगी. ये मौता इमाम मालिक की रिवायत है 1211. अब इधर भी कई सवाल हैं, फिर फिक्की इश्यूज आएंगे. कोई कहता है कर लो, कोई कहता है 40 साल से ऊपर की औरत, कोई कहता है 60 की, कोई कहता है ग्रुप्स में कोई औरतों का ग्रुप, कोई कहता है वक्ती महरम, कोई कहता है बहनोई. है ना ये सवाल हमारे कल्चर में, अच्छा बहनोई को साथ ले जाएँ, अच्छा किसी को बेटा बना लें. देखिए एक बात याद रखें, अपने लिए हमेशा दी बेस्ट लेवल रखें, और अगर किसी दूसरे को बिल्कुल लीस्ट मिनिमम, सुनिए और इसका जवाब दीजिए. आपने परसों ही मसला पढ़ा, अल्लाह अकबर. मुझे तो क्लास के दौरान जब अल्लाह अकबर की आवाज़ है इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि अल्लाह भी यहाँ बिल्कुल छत के पास ही था कहीं हमारे, और दुआ निकलती है कि अल्लाह ये सारा कुछ तेरी रज़ा के लिए हो। फिर इसी इसके बाद देखिए कि जो बात हम कह रहे थे कि ये सब कुछ करके लेना किससे है, अल्लाह से लेना ना। जब अल्लाह ने एक औरत को रुख्सत दे दी है, बाज़ लोग कहते हैं, और मेरे पास जब भी कोई सवाल लेकर आए, ख़ास तौर पर बताया आपको इस साल ये था, तो कितनी सिस्टर्स आई थी इस सवाल पे। मैंने कहा आपके शौहर, कहती वो नहीं जाना चाहते। कोई कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है, बीमार हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर आप सबको भी यही कहूँगी, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा इश्यू हो, आप खुद जाकर अकेले हज करके आके अपने हस्बैंड के लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर रही हैं। आपको हज कराने की नीयत से वो बेचारे हिम्मत कर ही लेंगे, आज नहीं गिल्ट होगा, अगले साल उससे बाद आप कर आइए, अकेले कर रहे हैं या वैसे ही चली जाएं किसी के साथ, तो वो तो फिर कभी सोचेंगे भी नहीं, और आपको फिर दोबारा खर्चा करके साथ जाना पड़ेगा। एक अगर बीमार समझते हैं या बड़ी उम्र में मिसाल, तो वो तो अकेले बगैर आपके जाएंगे नहीं। तो याद रखिए, तवासो बिल हक की तवासो बिल सब्र, इस भी रुआ साहब भी रुआ रहा भी तो नेकियों में एक दूसरे को साथ लेकर चले। और क्या एक औरत का कोई रिश्ता नहीं मानता, बेटा एक नहीं दो तीन, दामाद, भाई, मर्द, शौहर, अल्लाह ने कितनी खूबियाँ दी। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ शौहर के साथ जाओ, तो हमेशा अपने लिए दी बेस्ट को इख्तियार करें, फिर आगे अल्लाह पे छोड़ दीजिए। नंबर सवाल पैदा होता है कि इस्तेतात से क्या मुराद है, हाउ वी कैन डिफाइन इट। नंबर एक, सेहतमंद होना, रास्ता पुरअमन हो, ज़्यादा राह और सवारी का इंतज़ाम हो, रास्ते की कोई रुकावट ना हो, मसलन वीज़ा वगैरह आज के दौर में, या कैद ना हो, मसलन ज़ालिम हुक्मरानों का खौफ है। क्या आप किसी और का हज कर सकते हैं, इसको हज बदल कहते हैं, कर सकते हैं किसी और के लिए, शर्त ये उस शख्स ने खुद किया हो। नंबर दो, एहराम जब बांधा जाएगा तो नियत में उस शख्स का नाम लिया जाएगा जिसकी तरफ से हज किया जा रहा है। तीसरी बात, हज की जो वैसे अपने लिए भी शर्त है कि जो आपको हज बदल कर करा रहा है उसका माल हलाल कमाई का हो। फिर इसी तरह हज के भी अरकान हैं, नमाज के भी बता दूंगी एंड पे, जो किसी को एक का इशू है वो इंशाल्लाह एंड पे बता दूंगी। हज के 5 अरकान हैं। नंबर एक, नियत, बुखारी 1 और बैजीना 5। वकूफ़ अरफा यानी 9 ज़िलहज को मैदान अरफा में, समझे कि सूरज निकलने से या जोहर से लेकर असर की नमाज के पूरा होने तक का जो वक्त है उसमें खड़े रहना, सूरत बकरा 198, और इसी तरह से अबू दाऊद 1703। तीसरा रुकन है मुज़दलिफा में रात गुजारना, वही 9 और 10 के बीच की, सूरत बकरा आयत 198, तिरमिज़ी 891। चौथा रुकन है तवाफ़े ज़ियारा, जिसको तवाफ़े इफाज़ा भी कहते हैं, ये भी उन्हीं जामे तशरीक में ही करना होता है, सूरत हज आयत 29 और बुखारी 1733। और पांचवा है साई, मुस्तद अहमद जिल 6 421। हज का एक रुकन रह जाए तो क्या होगा, यानी इन पांच में से काम नहीं कर सके तो इसका हज नहीं होगा, इसका कोई कफारा या दम नहीं, आइंदा साल हज करना पड़ेगा दोबारा। चलिए, वाजिबात क्या है, वाजिबात कहते हैं जो वाजिब है। नंबर एक, मीकात से अहराम बांधना, सिलसिला सहीहा की रिवायत है 210। नंबर दो, रमी जमरात, जमरों को कंकरियां मारना, जिसको हमारे कल्चर में बड़े प्यार से शैतान कहते हैं, तो वो जमरात है। ये कौन सी जगह आपको पता, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ज़िबह करने के लिए ले जा रहे थे, इन मकामात पे आके शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी और उन्होंने पत्थर मारा था। हम कितने पत्थर मारते हैं जब हम नेकी का इरादा करें और शैतान हमें रोके, हम कहते हैं बहुत अच्छे वक्त पे समझ आ गई, पहले ही बच गए, नहीं वो पत्थर मारते थे। तो बहरहाल ये जमरात को कंकर मारना, मुस्लिम 1927। फिर खल्क या तकसीर, यानी या तो सारे बाल मुंडवा देना या उनकी ट्रिमिंग करवाना, फतहुल अलफत सूरह फतह 27 और बुखारी 1727। और अगली चीज़, अय्यामे तशरीक की रातें मीना में गुजारना, बकरा 203। और आखिरी चीज़, तवाफ़े विदा, जो मक्का छोड़ते वक्त किया जाता है, सही मुस्लिम 3219। कोई वाजिब रह जाए तो क्या होगा? ये जो भी हमने पांच देखे, तो फिदिया दिया जाएगा, दम देना जिसको कहते हैं। जानवर कुर्बान करने की ताकत ना हो तो फिर तीन रोज़े हज के दौरान और सात रोज़े घर जाकर रखने होंगे, और यही कफारा है उस शख्स का जो के, याद है आपको, बाल काट ले। कुरान की आयत याद आ रही है जी? वही आयत है। चलिए, जहाँ हज की बात आएगी वहाँ मीकात भी होगा। मीकात क्या है? जहाँ से अहराम बांधा जाता है। हर जगह का अलग है। आप उस किताबुल हज में से जाके सारे मुकाम नोट करेंगे कि मक्का में आने के जो पांच छह मुख्तलिफ रास्ते हैं उसमें किधर से क्या है। फिर इसी तरह से अहराम क्या होता है? क्या अहराम कपड़े का नाम है? नहीं। क्या है अहराम? कैफियत का नाम है। खास लिबास पहनकर हज या उमरे की नियत से जब मीकात से बंदा गुजरता है, इस सोच के साथ कि मैंने उमरा करना है या हज करना है, इस कैफियत को अहराम कहते हैं। ठीक है। अहराम में क्या क्या होता है? दो अनसिली चादरें मर्दों के लिए, एक तहबंद के तौर पे और एक ऊपर ओढ़ी जाएगी। दूसरी, अहराम में सर और चेहरा नंगा रखा जाता है। जूता ऐसा पहना जाता है कि जिसमें टखने खुले रहें, और जूता ना हो तो मोज़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काट लिए जाएंगे टखनों तक। इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है 2601 2601। औरतों का क्या अहराम है? उनके अपने कपड़े। अहराम की कोई ख़ास चीज़ औरतों के लिए मखसूस नहीं है, जो पहनती हैं वही। और ये बुखारी की रिवायत है 1545। हाँ, ख़ास तौर पे अहराम में जिस वक़्त आप अहराम की कैफियत में, तो निकाब, सिली हुई निकाब जिसको आप कहते हैं, और दस्ताने पहनने नहीं है। ठीक है। और इसकी मेरा ख्याल है कि आपको वो पूरी डिस्क्रिप्शन उस किताबुल हज में दी थी, याद है सबको? यही चादर ले लें। यानी अहराम में क्या करते हैं, सीधी सी बात लंबी चौड़ी के बजाय, जिन्होंने नहीं सुना वो समझ लें। एक औरत आम दिनों में निकाब करती है तो वहाँ मुंह खोल देगी जाके, कितना मज़ा आए। वो सारे जो उस शहर वाले कभी ना देख सके, उस औरत को वहाँ देख लेंगे। आप खुद सोचिए ना, आप ग्रुप में गए चार छः फैमिलीज मिलकर, और उस फैमिलीज़ में आप हमेशा निकाब में होती थी, और आप हज के दिन वहाँ सबके सामने मुंह खोल लेंगे। डज इट मेक एनी सेंस? सेंस ही नहीं बनती। हज़रत आयशा कहती हैं, हम दूर से जब काफ़लों में होती थी तो हम निकाब नहीं पहनती थी, पर जब कोई मर्द हमारे पास से आता तो हम अपने दुपट्टे से घूंघट कर लेती थी। तो देखिए, ये चादर, जैसे आज मैंने ढीली चादर ली है ना, अब ये चादर है, नीचे आप जो मर्ज़ी अबाया पहने, तो इसके साथ यूं कर लेंगे, यहाँ इसको एक पिन लगा लेंगे, दैट्स इट। अहराम में हम ऐसे ही करते हैं, मोटा लेते हैं। काला दुपट्टा नॉर्मल तो होता ही है, लेकिन जब अहराम की चादर हो ना, तो काला प्लेन मोटा सा दुपट्टा, चिपकने वाला बल्कि, जो स्लिपरी ना हो, वो ले जाते हैं। जो जो ही जहाज़ में ऐलान होता है कि हम मीकात से गुजरने वाले हैं, नियत करके, जो आपने देखा ही, मुझे तो आपने अक्सर ही देखा होगा, जो सिली हुई निकाब है उसको तय करके बैग में रख दिया, और मोटी चादर में पिन्ने लगाकर पूरा वक्त आप इसमें रह सकते हैं। बात वाज़े इसमें, यानी कोई इतनी बड़ी इख्तलाफ की बात नहीं। और सच्ची बात है कि जो कहीं और ना करे उसके लिए तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है। और सवाल अमूमन उलझाने के लिए किए जाते हैं, तो आप अपने समझ के साथ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। फिर इसी तरह से नासिरुद्दीन अल्बानी का एक कॉल सुन लीजिए। कहते हैं कि औरत का अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेना जायज़ है, ये निकाब डालना नहीं कहलाएगा। इन दोनों को बराबर करार देना खता है। आप इनकी किताब पढ़ लीजिए, तालीक़ात, पूरी तफसीर है उसमें पढ़िए। और इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह का भी यही कॉल था। अब इतने बड़े बड़े उलमा के बाद फिर हम किसको पूछें? और इब्ने क़य्यिम की बहुत मारूफ़ किताब है अल आलामुल मुअव्विक़ीन। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इसका हिस्सा पढ़ा होगा, बहुत ही खूबसूरत बुक है। तो उसके पेज 269 पार्ट 1 पे ये बात मौजूद है। और फिर यहाँ कहूँगी बड़ी इज्जत और माजरत के साथ, ऐसे मसलों में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही सवाल नहीं पूछने चाहिए कि जिससे एक दफ़ा तो किसी के दिल में शक ज़रूर ही आ जाए कि हो ना हो इनका मसलक और अकीदा क्या है। ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अहराम बांधने के तरीके और ये सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह उन किताबों में मिलती हैं जो हज से और उमरे से पहले दी जाती हैं। हर चीज़ का हवाला और रिवायत मेरे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं इस सोच से नहीं दूंगी कि आप किताबुल हज, जो बिल्कुल मेरे लिए आखिर में पढ़ी है आपने किताब, उसमें से इन सारे रेफरेंसेस को नोट कर, कुछ चीज़ें आपको हम असाइनमेंट में देंगे, वो आपने फिर वहाँ से नोट करनी है जो यहाँ नहीं, और जहाँ ये लगाएं वहाँ उसका लिंक भी वेबसाइट पे लगा दें ताकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा सुना उनको उधर से फ़ायदा हो जाए। तो बहरहाल जब सर पड़े उस वक़्त ही नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें अब हमें ज़ुबानी याद भी हो जानी चाहिए। कुछ अहराम की सुन्नतें भी हैं, खूबसूरत काम। नंबर एक, गुसल करना, अहराम का पाक साफ़ सफ़ेद और दो चादरों में होना, यानी वाइट होना शर्त नहीं है लेकिन अच्छी बात है अगर वाइट हो। फिर अहराम नफिल या फ़र्ज़ नमाज से फारिग होकर बांधा जाए, नाखून काटे जाएं उससे पहले, मूछें साफ़ की जाएं, अंडर आर्म्स के बाल साफ़ किए जाएं। फिर इसी तरह जब भी हालत बदली जाए तो तलबिया किया जाए, यानी बस में बैठे हैं जहाज़ में हैं तो गाहे बगाहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा जाए सवार होते हुए उतरते हुए, और तलबिये के बाद दुआ करना और नबी सल्लम पर दुरूद भेजना। क्या काम कर सकते हैं हम अहराम की हालत में? नंबर एक, गुसल। बुखारी की रिवायत 1840। सर या बदन पर ख़ारिश कर सकते हैं, बुखारी 1840। इलाज के लिए आँखों में दवा डालना या सुरमा लगा सकते हैं, मुस्लिम 2887। इलाज के लिए जिस्म से खून निकलवा सकते हैं, बुखारी 1835। खुशबू सूंघना, पेटी बांधना, अंगूठी, घड़ी और ऐनक पहनना। अब आप कहेंगे ये भी कोई बातें हैं, ऐनक पहन सकते हैं कि नहीं, सवाल कीजिए। मैं कहती हूँ कभी इतना इतने गहरे सवाल हम हलाल हराम के अंदेशे में भी तो करें। और ये रिवायत बुखारी की 1537 है। हमारी सिस्टर्स गई थी इस साल जो हज में, तो उनमें से किसी ने अपने एक्सपीरियंस सुनाया कि कितनी पाबंदियां हैं लोगों के ऊपर, अल्लाह की पनाह। और बहुत कह रही कि हम बैठे हुए मीना के खैमों में थे या कहाँ थे, नहीं वे ऐसे सहलाने को लेटी, और जब साथ लेटी तो हाथ यूं रखा ना यूं, तो जो उनका दुपट्टा था वो उनके मुंह पे, जैसे हम अक्सर ही अगर यहाँ अभी भी मैं लेटूंगी तो मुंह पे हाथ रख, तो कहती फौरन एक औरत भागी आई, भागी आई, आप पे दम है, आप पे दम है, आप पे दम है, किस बात का? कहती आपके चेहरे को कपड़ा लग गया, एकदम इन्होंने इन पे डाला। फिर क्या हुआ अगले दिन या किसी भी वक्त हुआ, कह रही गर्मी थी प्यासी, कोई बाहर से आया उसने मुझे ऑरेंज दिया तो मैंने उसको छील के तो खाना शुरू कर दिया। तो एक दूसरी, अब ये जो दूसरे थे ना ये किसी और स्कूल ऑफ थॉट को प्रेजेंट करते थे, भागी आई कहने लगी आप पे तो दम पड़ गया, क्यों? कहती आपने ऑरेंज खा लिया। अच्छा ऑरेंज खा लिया तो दम क्यों? कहती क्योंकि इसमें खुशबू थी। आप मुझे बताइए हम इतने पिकी सूद के मामले में क्यों नहीं है? हम इतने पिकी जिना और फहाशी और उरियानी और इसराफ और शादी ब्याह की रस्मों पे क्यों नहीं है? हम इतने पिकी अपनी जीनत के इजहार के मामले में क्यों नहीं है? कभी क्वेश्चंस, कभी बंदा सोचे ना तो वाकई उसकी जुबान बंद हो जाए। इस तरह का दीन लोगों को आप देंगे तो मुझे बताइए कि लोगों का जीना तो उबर नहीं होगा। लेकिन चूंकि आंखें बंद करके बगैर इल्म के सुनते हैं तो पढ़ते हैं, और फतवे दे दिए उन्होंने कहा इनके हमारे ग्रुप के साथ जो गया उनके ऊपर तो इतने दम है, इतने दम में इनका हज ही नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा आप हमें पैसे दें फिर हम अगले साल एक और कर लेते हैं। जितनी अब सोचिए सही, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आगे बेवकूफ़ियों की तरह जाना। देखिए शरीयत शरीयत है, ये मुमकिनाक नहीं है, ना ये मजाक है ना ये हंसी है। ये चीज़ें जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं इज़ अ रियल थिंग, वमा हुआ बिल हज़ल, ये हंसी मजाक तमाशा नहीं है। लेकिन ये बाज़ दफ़ा ऐसी गैर हकीकी बातें करके हम इसको मजाक बना देते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ से बचना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए टूटा हुआ नाखून फेंकना, मुख्तसर बुखारी में नासिरुद्दीन अल्बानी की भी ये रिवायत है 365 में। तो फिर इस तरह खैमे या छतरी का साया हासिल करना, कई लोग खैमों के नीचे नहीं आते, कहते सर पे छत ना हो। आपको याद है सूरह बकरा की वो आयतें क्या करते थे अहराम की हालत में? घर से बाप निकलते और कोई चीज़ भूल जाते घर के बैग से आते थे, कहते थे साए में से नहीं गुजरना। वही सोच है। फिर इसी तरह मुबा काम जो है, मिसाल है कि क्या काम कर सकते हैं, साबुन है हल्की फुल्की, उसमें स्मेल तो हर चीज़ में ही होती है, इट्स ओके। कई लोग स्पेशल, वैसे ये भी काफ़ी लोगों का कारोबार चलता है इन चीज़ों से, बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ें फिर लोग लेके साथ जाते हैं। एक खास आता है, एक होता है परफ्यूम लगाना, खुशबू उड़ाना, वो तो नहीं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो अपनी होती है। फिर इस समंदरी जानवर का शिकार करना जायज़ है, सूरत मायदा 96। 5 मूजी जानवरों में जिसमें बिच्छू भी है, कौवा भी है, सांप भी है, इनको कत्ल करना भी जायज़ है, बुखारी 3314। और एहराम की चादरों को धोना या बदलना ये भी जायज़ है। बुखारी 1545। क्या पता चला कि अल्लाह ताला किसी पर इस तरह का बोझ नहीं डालते कि जो वो इंसान बर्दाश्त ना कर सके। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो भी चीज़ इंसान करता है उसके अंदर हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। अगर हम किसी भी इबादत के दौरान इतने अल्लाह कॉन्शियस हों इस हद तक कि अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया उसको मानना है, तो याद रखें कि हमारी इन चीज़ों पे तवज्जो भी नहीं जाएगी। तो इल्म लेकर अच्छे तरीके से जाएं। एक सिस्टर थी, हज पे जा रही थी, नए बैग, नए सूटकेस, नए चप्पल, नए जाए नमाज, ये पुराने क्यों? कहती अल्लाह के घर जा रहे हैं ना, तो हम भी तो पुराने ही हैं ना। यानी इख्तमाम अच्छा होता है, लेकिन जब वो तकल्लुफात और इस तरह की मुश्किलात में फंस जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए, ख़तरे के हालत में असलहा साथ रखा जा सकता है, जैसे उस दौर में लोग लेके चलते थे। ये बुखारी 1844 है। औरत सर के बाल खोल कर कंघी कर सकती है, सही मुस्लिम 2910। फिर औरत जेवर भी पहन सकती है, रंगीन कपड़े भी पहन सकती है, बुखारी 1545। और उम्रा और हज का एहराम दोनों बराबर है, जो हज की जिम्मेदार पाबंदी है वही उम्रे की हैं। क्या नहीं कर सकते, ये चंद जुमले नोट कर लीजिएगा। मर्दों और औरतों सब के लिए सेम रूल्स हैं, याद रखिए। इबादत दोनों के लिए एक है। औरत और मर्द की जो बहस है ना, याद रखिए ये मामलात में है, वो आगे हम पढ़ेंगे, जिम्मेदारियों में है, हकूक में है। अदरवाइज इबादत सब की एक है। ये नहीं कि मुसलमान मर्दों का कलमा अलग है और औरतों का कलमा अलग है, ठीक है? तो पहली बात है कि जिस्म या अहराम पर खुशबू लगाना, हत्ता के मोहरम को वफात के वक्त भी खुशबू नहीं लगाई जाएगी। यानी अगर कोई अहराम की हालत में मर जाए तो खुशबू नहीं लगेगी, जैसे काफूर वगैरह मलते हैं मैयत को। निसाई 2856। इस तरह बाल और नाखून नहीं काट सकते, मुस्लिम 1977। उजर की वजह से बाल कटवाए या मुंडवाए जाते हैं लेकिन फिदिया दिया जाएगा, बुखारी 1815। कुरान क्या इरशाद है, एक सहाबी के सर में जुएं पड़ गई, काब बिन उजरा, तो फिर उन्होंने बाल कटवाए और बाद में फिर फिदिया दिया। इसी तरह जिनसी अफाल, लड़ाई झगड़ा या नाफरमानी का काम, अल बकरा 197 और बुखारी 1521। निकाह नहीं करवा सकते हराम की हालत में, ना कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं, ना पैगाम दे सकते हैं, मुस्लिम 1409। इसी तरह खुश्की के जानवर का शिकार या शिकार में तावुन नहीं कर सकते, अगर कोई कर दे आपके लिए तो उसको खा सकते हैं, मायदा 95 याद है हदीस, सहाबी का कम अमल, ठीक है? इसी तरह मर्दों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पाबंदियाँ, मसलन सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, अबू दाऊद 1823। सर पे पगड़ी टोपी या कपड़ा नहीं ओढ़ सकते, अबू दाऊद 1823। मोज़े जुराबे या टखनों से ऊपर जूते पहनने पसंदीदा नहीं है, मुस्लिम 1177। और औरतों के लिए जैसे बता दिया, निकाब और दस्ताने, और ना ऐसा कपड़ा जो ज़ाफ़रानी रंग में रंगा हो, यानी येलो कलर का पहले दौर में खुशबू वाला कपड़ा होता था, वो नहीं कर सकते इस्तेमाल, बुखारी 1838। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जहाँ ये बात होगी वहाँ फिदिया भी होगा। फिदिया क्या होता है कि किसी भी चीज़ में जो कमी बेशी हो गई है उसको फिर किसी तरह से कंपनसेट किया जाएगा। तो कुछ चीज़ों में फ़िदिये हैं, कुछ में नहीं है, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला आप जब हज पे जाएंगे आपको उससे पहले खूब अच्छी तरह पढ़ाएंगे। आप में जो भी जाना चाहे वो इन बुक्स को फ़ायदे की खातिर ज़रूर पढ़े। और इसी में फिर उम्रे का तरीका भी मौजूद है कि पूरा पूरा आप उम्रे का तरीका भी जानते हो। किसको अभी भी ज़ुबानी याद है, हाथ खड़ा करें, आप में से कौन कौन उम्रे पे गया कभी हज पे, नीचे कीजिए। हज पे कौन कौन गया है वो दोबारा हाथ खड़े करें। अब नीचे कौन नहीं जा सका अभी तक, दुआ करें कि अल्लाह आपका ये फरीजा पूरा करें, ठीक है? तो जी फिर उसमें बाल टूट जाएं तो उसका क्या होगा? देखिए, जो बाल खुद तोड़े वो नहीं, और दूसरी बात है कि जब इस तरह कंघी करेगी ना तो इस तरह नहीं करेगी कि बाल टूटे। जैसे आप शावर ले रहे हैं ना, बाल खोलेंगे, हाथ से उंगली से इस तरह सहलाना और उसको दोबारा बांध लेना, इस तरह से। यानी अवॉइड कीजिए उसको कि कंघी इस तरह करें कि उसमें से आपके बाल निकलें। और वैसे भी हम सबको खुद भी पता होता है कि कंघी में मेरे बाल गिरते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद से ना पता हो, बाल निकल जाए, टूट भी जाए, फिर भी इस होके, ठीक लेकिन जान के तोड़ना और एहतमाम से इस तरह कंघी करना कि जिससे यानी वाकई टूटों से अवॉइड करना चाहिए।
जान के तोड़ने से क्या मुराद है?
बाल खींचना, नोचना, प्लकिंग करना, वैक्स करना, बालों को निकालना, ऐसे कोई भी बाल नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उम्रा क्या होता है, इसका असल क्या है? आबाद करना। हज तो साल में एक बार है ना, उम्रा बार बार है। तो उम्रा क्या है कि हज करने वाले लोग बेचारे, जो लोग हज नहीं कर पाते वो उम्रा ही कर लें, और आबादी ही असल में हरम की उम्रे के साथ है। और जब उम्रा किया जाता है तो उसमें इंसान वो सारे काम करता है जो हज के सफ़र के बाद शुरू के दिन किए जाते हैं। मसलन गुसल करना, खुशबू लगाना, एहराम बांधना, दिल से उम्रे की नियत करना, अल्लाहुम्मा लब्बैक का उमरतन, फिर तलबिया पढ़ना। किसी को महसूस होता है अगर कि मैं रुक जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, औरतों के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो जब एहराम बांधे तो दुआ कर लेनी चाहिए, अल्लाहुम्मा महली हैसु हबस्तनी, ए अल्लाह मेरे हलाल होने की जगह वही है जहाँ आप मुझे रोक दें। ये बुखारी के अल्फाज हैं 5089। तो कभी मजबूरी हो तो ये दुआ पढ़ लीजिए, फिर अगर एहराम खोलना पड़ा तो गुनाह नहीं। तलबिया किस किस को आता है, पढ़ेंगे ज़रा सब मिल के पढ़ें। ये बुखारी 1549 है। इसके ज़रा मानी भी तो उर्दू में पढ़े मिल के ऐसे ही। वाकई हाजिर है। आप देखिए जब हम वहाँ लब्बैक कहते हैं तो क्या हमें हर नेकी के मौके पे लब्बैक नहीं कहना चाहिए? ये सवाल करें। क्या मैं हर नमाज के मौके पे लब्बैक कहती हूँ फ़ौरन उठ के, और हर नेकी के मौके पे मेरा जवाब लब्बैक होता है या कुछ और होता है? असल में ये इस चीज़ की अलामत थी कि आप लब्बैक कहेंगे। चलिए लब्बैक कहने की हिकमत समझ आई, लिखें रूहानी पहलू लब्बैक का। हर नेकी के मौके पे यस कह दें। मुझे समझ नहीं आता हम इतना सोचते क्यों हैं। हम नेकियों के मौके पे आगे बढ़ने से पहले इतना सोचते क्यों हैं? ज़िंदगी में एक असूल मैंने अपने लिए रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि अल्लाह उसकी वजह से ही खैर के रास्ते खोलता है। कभी नो नहीं की, रा आती नेकी या वो नेकी जो मेरे सामने कोई ऑफ़र कर दे, मैंने कभी पर्पसली इरादतन उसको नो नहीं कहा। छोटी है ले ली, बड़ी हो जाएगी खुद ही बाद में, उससे बड़ी मौजूद है लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना अभी, मैंने ले ली। फिर आप देखिए कि उससे आला दर्जे की भी नेकी है, आज तो नहीं है ना मेरे हाथ में। देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ, मुझे प्यास लगी तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ इस वक्त, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऑरेंज जूस चाहिए, और अगर फ्रिज में ऑरेंज जूस है तो वो भी नहीं चाहिए। हमारा ये हाल है, समझ आ गई है? अल्लाह आपको मुझे ये नहीं कहेगा आपने क्या किया, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह ये भी कहेगा कि क्या कर सकते थे और नहीं किया। और मुझे ये वो खुफिया छोटी चंद बड़ी बातें जिससे मेरे दिल में इत्मीनान है। कभी किसी नेकी को हकीर नहीं जाना, किसी बंदे को हकीर नहीं जाना, और कभी किसी नेकी को हकीर नहीं जाना। हत्ता कि आपने कहा पानी रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाने की हो ना, उसको भी हकीर ना जानो। और मैं और आप अपनी ज़िंदगी पे एक नज़र डालकर देखें, नेकियों के मौके मुंह खोल के खड़े होंगे, लेकिन हम उजर, एफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन। इतना तो बंदे को गुनाहों पे सोचना चाहिए। गुनाह पे हम क्या कहते हैं, कर लो ले लो ले लो, सेल लगी है, एक तुम भी ले लो, फ़ोन करेंगे तुम्हारी भी ले लूँ, दोस्त को फ़ोन करेंगे, बहन को फ़ोन करेंगे। बाज़ दफ़ा गुनाह ना भी हो, मोबाइल सही कोई इस्तेमाल की चीज़ है, उसकी भी ले लूँ, इसकी भी ले लूँ, और जहाँ नेकियों की बात तो सोच ले। इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके दिमाग में नेकी के नाम पे, तो फिर याद रखिए कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं है। ये क्यों पढ़ाया जाता है जब आप बस में वहाँ बैठते हैं, ख़ासतौर पर बस में जाके लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो मैं पूरा वक्त उस वक्त यही सोच रही होती हूँ जब भी अल्लाह ने मौका दिया, ए अल्लाह ये दिल की पुकार बना दे। ये थी अबू बकर की अशरे मुबशर होने की वजह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये थी उमर के उमर होने की, और उस्मान के और अली के अली होने की वजह, उन्होंने नेकी के मौके पे लब्बैक का। देखिए, कोई आपको गुनाह का मौका दे ना, क्या कहना चाहिए? ला लबैक, सॉरी, मेरे से नहीं उम्मीद रखना। आपको कोई दोस्त बुलाती है, आओ गलत चीज़ में मददगार बन जाओ, कोई आपका रिश्तेदार बुलाता है, उस पर 100 दफ़ा सोचिए नेकी के मौके पे क्या कहें। और ये कौन कहेगा? अल्लाहुम्मा कहेगा, जिसके दिल में अल्लाह का लफ्ज़ है। जो आप अल्लाह के लिए नेकी करते हैं और जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे करते हैं, उसमें न शक नहीं होता। चलिए, और क्या चीज़ करते हैं हज में? इधर लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिख लीजिए, तवाफ। अगर आप मुझसे तवाफ का, प्यार का नाम पूछे ना, लाड का नाम, समझ आ रहा है? तो वो क्या है? कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, सब अल्लाह के लिए। कैसे वारफ्तगी के साथ एक बंदा वहां चक्कर लगाता है, दीवानगी नहीं है? जिस बंदे ने कभी ये देखा ना, वो कहेगा इनको क्या हो गया। देखिए, बच्चे हैं ना, वो अमूमन माओ के कपड़े दुपट्टे ले लेकर ना घूम रहे होते हैं। कोई पिलर होगा तो छोटी बच्चियों को देखे, उसके गिर्द मस्जिदों में घूम रही होती है ना। ये तो बच्चों वाला काम है, लेकिन वहां जाकर बंदा बच्चा बन जाता है, अल्लाह को ये दिखाने के लिए कि मैं भी आपका दीवाना हूं, मेरी सारी जिंदगी आपके गिर्द घूमती है। आप इसकी फिकी, इसकी शरई, इस्तलाही तारीफें 10 पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह लिखाने को तैयार हूँ। अजर से, सवाब की नीयत पे, खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने, मुकामे इब्राहिम से शुरू करना और उसी पे आके ख़त्म करना, फिर 7 चक्रों के आखिर में 2 नफिल पढ़ना, ये तवाफ है। कोई आप में से जाए वहाँ तो क्या हजरे अस्वद, जहाँ बहुत रश होता है ना, जहाँ से शुरू होता है, कंजक्शन होता है, वहाँ आप वहाँ की बजाय उसे अगले कोने पे शुरू कर सकते हैं, जहाँ से वो इलाका, जगह शुरू हो जाती है हतीम की। आप रुकने यमानी से शुरू करें, वहाँ तो बहुत ही खुली जगह होती है, कहाँ से शुरू करते हैं और ख़त्म भी कहाँ करते हैं? और अगर आप सिर्फ वो आखिरी चंद स्टेप ना करें और बीच से निकल के चली जाएं, अमूमन हम पाकिस्तानी लोग बाबे फहद और बाबे उमर की तरफ रहते हैं ना, मोस्टली सीधे सामने होटल्स उधर ही हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपका घर का रास्ता उधर है ना, तो जहाँ पे तवाफ ख़त्म होता है वो आगे जाके फिर पलट के आना पड़ेगा। कोई तसव्वुर भी करता है कि इतनी सी जगह छोड़ दें? बिदाया तो नहाया तो तवाफ लिखा है ना, तो अमली ज़िंदगी में क्या हो जाता है हमें, ये है तवाफ। बाउंड्रीज को समझो, नेकी पूरी करो, अधूरी नेकियां छोड़ दो, राह जाती भागती दौड़ती नहीं। आप देखिए कि दीन का मिजाज आप सिर्फ एक हज और उम्रे से सीख सकते हैं। अल्लाह करे आपको मुझे वो हज और वो उम्रा नसीब हो जाए, दिल दिमाग में हिकमतों के दरवाजे खुल जाएं, फिर आपको दूसरों से नहीं पूछना पड़ता, फिर आपका दिल बताता है कि क्या है। उल्टे चलें तो इबादत होगी, तवाफ सीधा ही है ना। और आप देखिए कि आप वहां खड़े होकर तवाफ के दौरान रुकू भी शुरू कर दें, तवाफ होगा। जब वहां बे सोचे समझे चल रहे हैं, तो आप इस दुनिया में वापस आकर फिर क्यों इतने इफ्स एंड बट्स में पड़ते हैं? ये आपको मुझे तवाफ सिखाता है। फिर इसकी इकसाम है, इसकी शरायत है, मैं इनमें नहीं उलझाऊंगी आपको। अल्लाह आपको ले जाए, आप उससे पहले पढ़कर जाइए, लेकिन तवाफ बराए तवाफ नहीं है, घूमना बराए घूमना नहीं, वहां से लेके आइए फफिर्रु इलल्लाह। और यही है कि कुल्लू यस्बहून, सारे ही भाग रहे हैं। आप देखिए कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सबको पता है ना, अंदर क्या है न्यूट्र, बीच में क्या है न्यूक्लियस, घूम क्या रहा है, और प्रोटॉन क्या है, ये हाथों से ही आप देख लीजिए। ये सिखाता है एक सेल, इवन अमीबा, यूनिसेलुलर जानवर आपको सिखाता है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। तो वह आप सिर्फ इस बात का इजहार है कि तुम भाग दौड़ करो, अल्लाह के गिर्द चक्कर लगाओ। और हम वहां बैठकर भी जाकर बातें अल्लाह के बजाय फोनों पे करके आते हैं। अब तो ये भी मुसीबत है, लोग आप नहीं कर रहे ना, आपके साथ वाला अपने फोन पे बातें कर रहा है, सौदेबाजियां हो रही हैं। और वो शख्स वहाँ, एक शख्स ने सुनाया कि मैं तवाफ में दूसरे शख्स की बातें सुन रहा हूँ, फोन आ गया, हेलो, ये जी ये मुसीबत आ गई, अच्छा बड़ा सा बकरा जाकर बाबा जी के दरबार पे दे आओ। जी वल्लाही, ये हंसने की नहीं रोने की बात है, खड़े कहाँ हो और बाबा जी को किधर बकरे दे रहे हो? याद रखिए, ये जाहिल उम्मत के हज और उमरे हैं। जितना डिप्रेशन मुझे उमरे या हज पे जाकर उम्मत को देखकर होता है, कपड़ों से बेनियाज, वैसे कोई जरा टांगे नंगी कर ले तो कहेंगे मॉडल है, उस बेचारी का जीना दोबर कर देंगे। और वहां औरतें देखिए, दुपट्टे हटे हुए, सीधी सादी गांव की औरतें, और पता ही कुछ नहीं ना उनको, बेचारियों को जनाजे की नमाज पढ़नी आती अपने कामों में। तो याद रखिएगा कि शऊर से करें। चलिए, एक और क्या चीज होती है हज और उमरे का लाजमी हिस्सा? ये मेरे हाँ, सही क्या सिखाती है? सही क्या है? इबादत की नीयत से सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना या चलना, और 7 चक्कर पूरे करने। रुकन है, याद रखिए, इसके बगैर हज उमरा नहीं होगा। लेकिन असल में सही क्या है? फफिरुल्लाह। कितनी? वन अलई सलील इंसानी इल्ला मासा, वसतें, कोशिशें, भाग दौड़। कितनी सही है हमारी अल्लाह के दीन के लिए। मैं कहती हूँ, बाहर की गंदगी देखे ना तो चैन नहीं पड़ता। किस जगह सांस ले रहे हैं हम लोग? लेकिन हम कहेंगे सही के फ़र्ज़ क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, इसमें बात करें, कहाँ दौड़ें, क्या करें, ये भी है। और कई लोग 7 चक्कर नहीं लगाते, आपको पता है कितने लगाते हैं? 14 लगाते हैं। उनकी स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि एक इधर नहीं पूरा होता, एक इधर से इधर आके पूरा होता है, वो 14 चक्कर लगाते हैं। जी, जमात खड़ी हो जाती है, ये सही में मसरूफ़ रहते हैं, ये भी नहीं ठीक काम। बाजा नमाज छोड़, बाजमा नमाज छोड़ी, कई हरम में जाके जमात से नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? कहते हैं ये वहाबी हैं, ये सऊदी अरब वहाबी लोग हैं, इनके पीछे नहीं हमने पढ़नी। हज वाले दिन जाकर कोई इमाम काबा के पीछे जोहर और असर जमा करके नहीं पढ़ता। कहते हैं ये बाबा जी हैं, ये वहाबी हैं, ये सऊदी अरब इस वक्त खाना काबा वहाबियों के कब्जे में। नऊज़ु बिल्ला। इस उम्मत को क्या मिलना है? दुश्मनों गोलियां नहीं मारनी तो और क्या मारना है हमें? शर्म आनी चाहिए हमें अपने हाल पे। हम उस वहां जाके इख्तलाफ करते हैं जिस इबादत का मकसद ही यूनिटी था। तो ये असल में हमारी बेअमल बे इल्म वाली इबादत है। अल्लाह ताला हम सब के रहम करे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हिकमतें और ये सारी चीज़ें हम समझते गए। उम्रे की फजीलत क्या है जी, कोई बताएगा? आप देखिए कि दिल में शौक पैदा होता है अल्लाह के रस्तों में निकलने का, भागने का। और जितना ज़्यादा आप इसकी कोशिश करेंगे ना, अल्लाह ताला उतना आपके दिल में इसका और भी शौक डालेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह का घर आबाद रहता है, और उम्रा करने से दूसरे उम्रे तक गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हज की हिकमत तो मैंने पीछे भी आपको बहुत सी बता दी। और एक आखिरी चीज़, और वो क्या है कि जिसका ना तो हज से ताल्लुक़ है ना उम्रे से ताल्लुक़ है, लेकिन हमारे शौक और मोहब्बत से ताल्लुक़ है, वो है ज़ियारत मस्जिद नबी। 3 जगहों में से एक जगह जिधर इबादत की नीयत से जाना सवाब का ज़रिया है, वो मस्जिद नबी है। अब यहाँ फिर एक जुमला बड़े गौर से सुनिएगा, सारी नातों में सुने और बोले हुए अल्फाज को सामने रखते हुए। मदीना क्यों जाना है? मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के शौक़ में, ज़ियारत रोज़े की नहीं। आज हमारे तसव्वुर में आ गया कि काबा अल्लाह का है, मक्का अल्लाह का है, खाना काबा भी अल्लाह का है, और मदीना रसूल का है, और मस्जिद नबी भी रसूल की है, और उसमें जो रोज़ा और रोज़े की जालियाँ। देखिए, हर चीज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन मदीना जाएंगे मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो अजर है, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो अजर है। लेकिन अगर मस्जिद का तसव्वुर अलग करके रोज़े को देखना, रोज़े पे खड़ा होना, इवन अब रियाजुल जन्ना में नफिल की नीयत से भी जाएंगे तो भी वो सही फैसला नहीं होगा। तो मदीना की, जैसे मैंने बात पहले भी कर दी, ये अपनी जगह पे एक बहुत ही सआदत है कि आपको अल्लाह मस्जिद नबी में जाने का मौका दे। मदीना में जाना भी बहुत मोहब्बत की बात है। हज़रत उमर मदीना में मौत की दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे मौत देना, फ़ी बलदी रसूलिक, तेरे रसूल की बात। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ मस्जिद नबी में जाकर मुझे महसूस होती है कि अल्लाह के नबी का जस्ते मुबारक इधर मौजूद है। काबा वाकई हरम में और मक्का में तो अल्लाह याद आता रहता है, और मदीना आकर नबी याद आते हैं, ख़ास तौर पर मस्जिद नबी। आप कहते कि इमाम मालिक मदीना में जूता नहीं पहनते थे, प्यार था उनको, और मस्जिद नबी में किसी को ज़रा सा ऊंची आवाज़ से बात करते देखा तो डांट के कहने लगे, गुस्से में कहा कि साहिबे कब्र की तज़ीम करो, इधर आवाज़ें नीची रखो। तो अल्लाह ने उस जगह को बड़ी इज़्ज़त दी है। मस्जिद नबी में नमाज का कितना अजर है, हदीस नोट कर लीजिए, बुखारी 1190। پر میں میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ افضل ہے. عموماً ہمارے کلچر میں کیا معروف ہے؟ 50,000. یہ پتہ کیوں ہے؟ چلو اللہ سے آدھا تو ہوگا نا رسول کا, وہاں 1,00,000 ہے تو یہاں 50,000. ایسا نہیں ہے, دیکھیے 1,000 بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے اس کی زیارت سے انشاءاللہ انسان کے دل میں اسلام کی ہسٹری, صحابہ, اللہ کے نبی کا پیار آتا ہے. اور اگر سیرت پڑھ کے جائیں یا وہاں جا کے پڑھیں تو ایک ایک ستون پہ آپ کو پتہ ہے ہسٹری لکھی ہوئی ہے. ستون ابی لبابا کون سا تھا؟ کون تھے ابو لبابا؟ کس نے باندھا تھا ان کو؟ کیوں باندھا تھا؟ ریگریٹ تھا کہ یہ کیوں کہہ دیا. اللہ اکبر, کبھی ہمیں بھی اتنا گلٹ ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح, اس وقت تو اس پوری امت کو وہاں کھڑا کر کے پڑھانے کی ضرورت ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہم کیسی امت بن گئے اپنے پیارے نبی کی. ریاض الجنہ کیا ہے؟ ما بین القبری و ممبری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور قبر کے بیچ کی وہ جگہ جہاں آج کل سبز رنگ کا کارپیٹ ہوتا ہے, باقی جگہ پہ سرخ ہے. اس جگہ کو آپ نے ریاض الجنہ کہا, اور کہا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. بخاری کی روایت ہے 1196. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. اور جب جائیں مسجد نبوی میں تو کیا روزے پہ جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے. جا کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے لیے دعا کرنی ہے. دیکھیے مسجد نبوی میں عبادت کی غرض سے جائیں گے, روزے رسول کی نیت سے نہیں. روزے کی جالیوں کو چومنا, چھونا, بوسے دینا, اب تو وہ دینے ہی نہیں دیتے, بیچ میں بہت سارے بیریئرز ہیں. غیر مسنون درود پڑھنا اور قبر مبارک پہ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہنا, اور یہ سوچنا کہ یہاں آ کے جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوں گے, اور یہ سوچنا کہ یہاں آ کے بول رہے ہیں تو اللہ کے نبی سن رہے ہیں, اور پھر وہاں سے الٹے پہنچانا, یہ سارے غیر مسنون عمل ہیں. آپ جائیے وہاں, محسوس کیجئے محبت کو, محسوس کیجئے. نماز والا ہی درود پڑھیں گے, اور التحیات للہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر پڑھے جا سکتے ہیں, مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ وہاں جا کر تو یہ دیکھ کر آئیں کہ اس شخص نے اپنی زندگی لگا دی آپ کو مجھے اسلام دینے کی, اور آج اس اسلام کو صرف پڑھنے کے وقت پہ ہی آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا وقت لگ رہا ہے, عمل تو کرنا بہت دور کی بات ہے ابھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عبادات تک جو موضوع ہمارا پورا ہوا, اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں رنگ ڈال دے. پورا ویکینڈ ہوگا آپ کے پاس, آپ نے ایک ایک عبادت کو اپنی چیک کرنا ہے. حج کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اپنے بچوں کے حج کی فکر کیجئے, ابھی جوانیوں میں ان کو حج کرا دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے قبلے درست ہو جائیں. اور اسی طرح سے اپنے روزے اور ساری چیزوں کو, اور سب سے بڑھ کے آج جو شروع میں آپ کو روحانی پہلو دیا ہر عبادت کا, اس پہ غور و فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. چھوٹا سا اسٹریچ لیجیے, تھوڑی سی ان کو ایکسرسائز کروائیے, پھر انشاءاللہ آج ایسے صحابی کے بارے میں پڑھیں گے جس کے بارے میں میرا خیال ہے بہت ساروں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. کون ہے آج کے صحابی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ. تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی کیا خوبی تھی, لیکن آپ تھوڑا سرچ کرا دیں.